जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जीवन शैली। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त अंश श्रीवास्तव। जलवायु परिवर्तन के लिए जीवन शैली जिम्मेदार है। हाल ही में दुबई में हुए 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी थी कि दुनिया तबाही की कगार पर है, और यह सम्मेलन हमें आखिरी मौका दे रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 200 देश डीजल, पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से दूरी बनाए पर सहमत दिखाई दिए। जीवाश्म ईंधन सोलंगल वायु का सबसे बड़ा कारण है। यदि इस पर निर्भरता धीरे धीरे घटाई जा सके तो जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे पहले वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन में निपटने के प्रयासों व सामूहिक प्रगति पर नजर रखने के लिए पेरिस में भी 200 से अधिक देशों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर औद्योगिक काल 1850 से 1900 के स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर रहा है, लेकिन महसूस किया गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक निधि अपर्याप्त है। पिछले सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इसका विशेष हुआ था विरोध भी किया गया था। उसका कहना था कि जब तक नवीनीकरण ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक जीवाश्म ईंधन का पर बंदिश लगाना उचित नहीं है, क्योंकि दुनिया की 80% ऊर्जा जरूरत इसी से पूरी हो रही है। दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन से दूर रहने के लिए वे भी सहमत हैं। इसके साथ ही 2023 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 40 से अधिक देशों और 20 संगठन के मंत्रियों, नीति निर्माताओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने एक वार्ता करके कहा है कि वे वैश्विक स्तर पर स्थापित नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने और इस समय सीमा में वार्षिक ऊर्जा क्षमता सुधार को 2 गुना करने के लक्ष्य प्राप्त करने पर सहमत हैं। लेकिन इसे हासिल करने के लिए 4.5 अरब डॉलर की आवश्यकता है। वर्ष 2009 में कोपनहेगन में हुई जलवायु वार्ता में प्रस्तावित हरित जलवायु निधि में अमीर देशों ने 2020 तक हर साल विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर की मदद करने का संकल्प लिया था। लेकिन किसी भी साल वे इस राज को नहीं जुटा सके। इन देशों में 2013 में 52.5 अरब डॉलर जुटाए थे, जो 2015 में घटकर 44.6 अरब डॉलर हो गए थे। 2019 में उनकी तरफ से 80.4 अरब डॉलर का फंड ग्रह किया गया था, जो 2020 में बढ़कर 83.3 अरब डॉलर हो गया था। अब तो 100 अरब डॉलर से भी अधिक की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी में 2030 तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के प्रयासों को झटका लग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 55 देशों को बीते 2 दशक में जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं में 525 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 2030 तक क्या बढ़कर 580 डॉलर पहुंच चुका है। वही अगर अकेले अमेरिका से उसके उत्सर्जन प्रभाव की कीमत वसूली जाए तो यह 1900 अरब डॉलर होती है। विकासशील देशों का सवाल है कि क्या अमेरिका इस कीमत को चुकाएगा? अगर नहीं तो फिर किसी दूसरे देश से कैसे कह सकते हैं कि वह विकास न करके? इस संदेश से ऐसा लगता है कि सभी देश अमेरिका की राह पर हैं और आधुनिक जीवन शैली व विकास के मायने जलवायु परिवर्तन से ही। जीवाश्म ईंधन के उपयोग का आखिरी पन्ना 28वें जलवायु सम्मेलन में नहीं पलटा जा सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन के अंत की शुरुआत वहां से की जा सकती है। इसके लिए कोयला से बिजली बनाने वाले देश जैसे भारत और चीन से भी अपेक्षा की जा रही है। क्या कि वे चरणबद्ध तरीके से कोयला के उपयोग से कमी करें। हालांकि भारत विकसित देश बनने का कोयला पर कितना नियंत्रण कर सकेगा या तो समय ही बताएगा। मजबूत विकल्प के अभाव में जीवाश्म ईंधन और कोयले पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करने की तैयारी भी अभी नगण्य है। दूसरी ओर विकल्प के तौर पर परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो रेडियोएक्टिव कचरे की लेकर खतरे का तरीका आशंका जताई जा रही है। विकासशील देश विकसित देश पर आरोप लगा रहे हैं कि वे अपना योगदान देश की बजाय भारत, ब्राजील, चीन जैसे देशों पर दबा बना रहे कि वे विकास के लिए होने वाली औद्योगिक गतिविधियों में कमी लाएं। विकासशील देश कह रहे हैं कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए ज्यादा वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। हालांकि प्रति कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से देखें तो आज भी विकसित देशों की जलवायु परिवर्तन में हिस्सेदारी भारत जैसे देशों में कई गुना ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही गर्मी आजीविका स्वास्थ्य समाज के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन रही है। महिलाएं इसकी भारी कीमत चुका रही हैं। गर्मी के उद्देश्य दैनिक जीवन का काफी कठिन कर दिया है। आदिवासी हिमालय के पर्वतीय भूभाग में खेती के साथ साथ जंगल से घास, लकड़ी और जल स्रोत से पानी लाने के लिए महिलाओं पर एक तरफा जिम्मेदारी। उनमें लगातार हो रही कमी के कारण महिला श्रमिकों के लिए सिर पर और पीठ का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को लैंगिक रूप से उत्तरदायी और संवेदनशील बनाया जाए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO ने भारत का एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें जलवायु संकट के कारण 2011 से 20 के दशक को औसत से ज्यादा गर्मी और सर्वाधिक बारिश वाला बताया गया है। इस अवधि में जलवायु परिवर्तन की दर बढ़ रही है जो रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु मौसम जल संसाधन पर किए गए शोध के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, चीन व अरब पर्याय द्वीप के दक्षिणी तट के लिए यह दशक सबसे अधिक गर्म रहा है। ठंडे दिनों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले दशक में 1961 से 1990 के दशक की तुलना में ठंडे दिन 40% घटे हैं। भारत में बाढ़ की समस्या भी बढ़ गई है। जून 2013 में भारी बारिश, पहाड़ों को बर्फ पिघलने की वजह से हिमालय क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, भू घसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही। बाढ़ के कारण इन दौरान भारत में हजारों मौतें हुई हैं। गर्मी आग से बचने के लिए जीवन यापन पर बड़ा असर पड़ा है। आजीविका के सीमित साधनों के चलते लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। वर्ष 2022 तक की IPCS अंतर सरकार जलवायु परिवर्तन समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 के स्तर से दुनिया का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर यह 1.7 से 1.8 डिग्री तक बढ़ता है तो दुनिया की आधी से अधिक आबादी का जीवन संकट में पड़ सकेगा। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या राय है जलवायु परिवर्तन को लेकर? अपने फोन में नंबर 3 दबाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।